समय सारण शीलन भाग दो पेज नंबर 239। सबसे नीचे के पहले की बात करते हैं, उसके पहले का एक पहली पैरा। ये जो अपनी टिप्पणी चल रही है 16 छंदों 20 छंदों के बारे में, वो सब बात है। यद्यपि आत्मा में अनेक साधारण धर्म हैं, सामान्य धर्म हैं, तथापि चित्त स्वभाव आत्मा का असाधारण धर्म है, विशेष धर्म है, प्रगट अनुभव गोचर धर्म है। इस कारण उसे ही मुख्य करके यहां जीव को बार बार चित्त स्वरूप ही कहा गया है। आत्मा के सुख गुण की अपेक्षा आत्मा को सुख स्वरूप भी कहा जा सकता है, वीर गुण की अपेक्षा आत्मा को वीर स्वरूप भी कहा जा सकता है, प्रमेय गुण की अपेक्षा प्रमेय स्वरूप भी कहा जा सकता है। लेकिन यहां 20 दफे मौका आया तो दूसरों को एक बार भी मौका नहीं दिया। और चित्त स्वरूप चित्त ही शक्ति समझ लीजिए, जीवत्व शक्ति, ज्ञान दर्शन शक्ति, इनको ही 20 बार रिपीट किया। तो उसका कारण यह है कि किसी चीज को पहचानना हो तो उसके असाधारण धर्म को बताना पड़ता है। साधारण माने सामान्य, जो अन्य धर्मों में भी पाए जाएं, उनके बताने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। तो पहली बात तो असाधारण धर्म, तो असाधारण धर्म भी बहुत है, सुख है वो भी असाधारण है। तो फिर चित्त स्वरूप, चित्त स्वरूप जब कहते हैं ना, उसमें जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, दृषि शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये चार आ जाती हैं एक तरीके से। और भी आगे जाओ ना तो सर्वज्ञत्व शक्ति, सुपर प्रकाशकत्व शक्ति, ये भी सब आ जाती है, ज्ञानी के स्वरूप है ना ये सब। ज्ञान ज्ञान यद्यपि उपयोग लक्षण में ज्ञान और दर्शन दोनों को लक्षण कहा है, तो दर्शन तो वैसे ही निराकार है, उसे तो हमारे पकड़ में वैसे ही नहीं आता है, तो उससे आत्मा कैसे पकड़ में आएगा। इसलिए कथनों में ज्ञान गुण की ही मुख्यता होती है, और वो पकड़ने वाला भी ज्ञान है और पकड़ने का जो चिन्ह है वो भी ज्ञान है। इसलिए हर जगह इसे चित्त स्वरूप कहा है तो उसमें अनंत गुण स्वरूप ही समझना। जब अंत में जब प्रशिष्ट लिखेंगे तब इस बात का खुलासा करेंगे कि तुम आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हो, ये जो चित्त स्वरूप कहा ना, तो क्या आत्मा में ज्ञान के अतिरिक्त और अन्य कोई गुण नहीं है? यदि हैं तो उनका नाम क्यों नहीं लेते हो? तो उनने दो तरह से जवाब दिया। एक तो जो अभी मैं दे रहा हूं आपको, कभी ज्ञान पहचान का चिन्ह है, ज्ञान से पहचानते हैं, और दूसरी बात यह है कि बाकी को छोड़ दिया हो तो ये आरोप लगेगा छोड़ दिया। तो बाकी के अनंत गुण एक ज्ञान गुण में ही तो समाहित हैं। जब मैंने शुरू में समय सार का स्वाध्याय किया था, ये सन 62 की बात होगी, तो ये बात मेरे दिमाग में बहुत खचित हो रही थी। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था एक अपेंडिक्स का सन 62 में। 62 समझते हैं कितने साल पुराना है? तो उस वक्त सुबह का समय था और ऑपरेशन में जाना था, तो मैंने अस्पताल में भर्ती था भोपाल में, तो मैंने कहा अभी मैं मंदिर के दर्शन करके आ जाऊं, तो झरना का मंदिर वहां पास में है अस्पताल के, तो उस मंदिर में मैं दर्शन करने गया। तो वहां मैंने करीब 15-50 दोहे लिखे, फिर तो मंदिर में बैठे बैठे, और 12 भावनाएं भी लिखी थी जो आदि खो खो आ गई। उनमें एक दोहा ये था जो मुझे आज भी याद है, वो तो कॉपी तो मैं तो फिर चला गया ऑपरेशन में, तो जिनने संभाली होगी उनने संभाली होगी, और फिर आज तक मेरे को मिली नहीं वो कॉपी। इसमें लिखा था ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, प्रज्ञायक भी कहते उसे प्रगट पुकारा आपते। ये दो हजार दिखाया जा रहा है, हैं? 60 वर्ष हो गए, 60 तो नहीं हुए होंगे, 48 वर्ष हो गए, ये बात पक्की है ना। डॉक्टर सुंदरदास मुनि ने ऑपरेशन किया था ना अपेंडिक्स का, तो उसमें क्या यह है कि ज्ञान मात्र शब्द में अनंत गुण व्याप्त हैं और उनको मिलाकर के उसे ज्ञायक भी कहते हैं, तो ज्ञायक में भी अनंत गुण व्याप्त हैं, क्योंकि ज्ञायक कहते ही हमने द्रव्य को लिया, गुण को नहीं लिया। ज्ञान मात्र में तो कभी ऐसा लगता है कि गुण को ले रहे हो, तो द्रव्य में तो अनंत गुण समाहित है ही है, और दृष्टि का विषय द्रव्य तो भी अनंत गुण अभेद रूप से तो उसमें है ही ना, गुण भेद का निषेध किया है क्या? तो एक तो बात यह हो गई कि ज्ञान मात्र चित स्वरूप, मैं तो चित स्वरूप हूं, मैं तो चित स्वरूप हूं, ऐसा ही क्यों कहा? अब यदि हमारे ख्याल में ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से आ गई, बिल्कुल निशंक अवस्था हो गई, तो फिर इसकी क्या जरूरत है कि मैं चित रूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं दर्शन स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं वीर स्वरूप हूं, मैं प्रमेय स्वरूप हूं, क्या जरूरत है? आपके ज्ञान में वो अनंत गुण मैं आत्मा ही आना चाहिए ना, ये तो सब भेद ही हो गया ना सर। जिस भेद का निषेध किया है वो भेद खड़ा हो गया। ध्यान तो भेद के निषेध की अवस्था का नाम है, और अब ये कहते हैं कि ध्यान में ऐसा ध्यान करो तो भेद को खड़ा करने को कह रहे हो तुम, विकल्प खड़ा करने के कह रहे हो तो आपको हमने थोड़ी कहा, ये तो माघनंदी के सूत्र हैं, फलाने के सूत्र हैं, उनने कहा है ऐसा ऐसा, तो वो तो सब तत्वान्वेषण काले, तत्वान्वेषण के काल की बातें हैं। ये जो चार धर्म ध्यानों का स्वरूप बताया है, जो बहुत विचित्र बात है, वो तो सब विकल्पात्मक है। कैसे? आज्ञा विचय, भगवान की आज्ञा क्या है इसका विचार करो, सीधा सच्चे अर्थ में चरणानि योग का स्वाध्याय। जो आज्ञा का वाला की मुख्यता है ना, वो चरणानि योग के मामले में है कि मीन में एक नहीं करना, आलू में अनंत जीव कहते चुपचाप छोड़ देना, बहस नहीं करना क्या, क्योंकि उनको गिनाया नहीं जा सकता, गिनाए नहीं जा सकते हैं? और जो ये लगा ना कि आगम चक्खु साहू, साहू आगम चक्खु हैं, आगम में भाई आगम का मतलब अकेला वो चरणा नहीं हो गया, घबराएंगे नहीं, पूरी बात सुना, मुख्य रूप से उसे ले लो, बाकी प्रेम गुण रूप से ले लो। क्यों? कि उसमें कहा कि तुम चार हाथ जमीन देख के चलो, और उसमें तर्क वितर्क मत करो, कभी साहब चार इससे छोटे भी तो जीव हो सकते हैं, इससे बड़े भी तो हो सकते हैं, हैं? इस चार हाथ से दिल कहते सब जीव तो बचेंगे नहीं, तो पूरी हिंसा क्या बची? अरे वो सब भगवान ने सोच लिया, अब उनने तुम्हारी आंखें घुटनों में तो लगी नहीं है, तो तुमसे एक हाथ चल के चलने की बात कह रहे थे, अब तो 3.5 हाथ ऊपर हैं आंखें, तो उसे 4 हाथ का एंगल वो ही बनेगा क्या? इसका नाम है आज्ञा विचय। क्या है भगवान की आज्ञा? इस संदर्भ में हम कैसा आचरण करें तो भगवान की आज्ञा क्या है, बस वो है। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई तू गाय के स्तन से दूध निकले और अंतर मुहूर्त तक कि पहले गर्म कर लो तो बाद में भी ले सकते हैं, और अंतर मुहूर्त के पहले तो बिना गर्म किया भी ले सकते हैं, और उनकी आज्ञा है, इसमें जीव नहीं पड़ेंगे, उसके बाद पड़ जाएंगे। हम तो देखा, हम तो वो मुकेश कहता था ना, हम वो ऐसा लगाएंगे दूरबीन, क्या कोई प्रोजेक्ट करीब 40 कोई लाख का आता है, और वहां से लगाएंगे और उसमें हम आलू में और पानी में और सब जीव को चलते हुए दिखाएंगे, ठीक है दिखाना तुम अच्छी बात है, नहीं उससे लोगों को बहुत भरोसा होगा फिर नहीं करेंगे। तो मेरा मतलब ये है उस पर तो भरोसा हो जाएगा, उस सर्वज्ञ पर भरोसा नहीं रहेगा। क्या मेरी बात सुने, आप सोच सकते हो कि क्या उल्टी उल्टी सोचते हैं। अरे भाई हमारे क्या है, एक वस्तु के बारे में बता रहे हमारे सर्वज्ञ भगवान आचार्य महाराज पूर्वज माँ बाप कि बेटा ये नहीं खाना, इसमें बहुत जीव है, ये नुकसान करती है, तो उसके प्रयोग कर करके देखने की कहाँ जरूरत है, अपनी शक्ति उसमें खर्च करने की कहाँ जरूरत है। और क्योंकि वो प्रयोग संभव नहीं है ना, थोड़े बहुत तो माथा मारोगे भी तो उसे क्या हो जाने वाला है, नहीं तो बहुत कठोर शब्दों में ये कहता हूं कि अपने को पशु की हालत में ले जाना हो तो ऐसी बात करना। क्यों? कि पशु के पास पूर्वजों का दिया हुआ कुछ नहीं है। क्यों? हमारे पास तो हमारे पूर्वजों ने खूब प्रयोग कर करके देख देख के, महंत ने, सिद्ध ने, हमारे माँ बाप ने, और उन्होंने लेकर के हमें बहुत सी चीजें सिखाते ना कि बेटा आग के पास नहीं जाना, समुद्र के पास नहीं जाना, उस एरिया में घूमने नहीं जाना, इसमें एक बहुत खतरनाक पॉइंट है, बम्बई जाओ तो जेब को संभाल के रखना। बहुत उन्हें जेब में कटा कटा के उन्हें अनुभव कर लिया है ना, अब तुम उसका फायदा क्यों नहीं लेते हो, समझ गए ना। तो मतलब अपन इसका मतलब है कि हम पशु बनना चाहते हैं, अथवा दूसरा हम बने बनाए पशु हैं, ये हमारी पशु की वृत्ति है। क्या क्या समझ रहे हैं आजिद भाई, ये हमारी जो वृत्ति है, कई माँ बाप समझदार हैं और हमें शुद्ध सात्विक खान पान की बात बता रहे हैं कि ये खाने योग्य नहीं है, अब क्यों माथा मारना है समझ जाना, क्योंकि कहीं कहीं तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भाई इसमें तो ज्यादा जीव हो, ये तो बताया नहीं है, तो अपन करेक्शन कर दें। अरे वो असत्यानुष्ठान के हिसाब से उन्होंने उसे छोड़ दिया है। कैसे? कि कुत्ता यदि तुम्हारी रोटी चख ले तो फिर पूरे ही चौका खत्म करके धोना पड़ेगा और सब फेंकना पड़ेगा, और बिल्ली यदि एक रोटी को चक्का लेके भागे तो वो रोटी हटा देना। अब बताओ क्या फर्क है कुत्ता बिल्ली में, वो भी हिंसक ये भी हिंसक है? उनकी वृत्ति में दोनों मांसाहारी कोई फर्क नहीं है, लेकिन असक क्या अनुसार कुत्ते को घर के बाहर रोका जा सकता है, बिल्ली को नहीं रोका जा सकता है, उछल की कुछ दिनों कहां से आती है, कैसे कैसे बंद करें है? और यदि रोजी ने चौका फेंक दें। अब और देख लीजिए कि बिल्ली को भी रोका जा सकता है, लेकिन मक्खी, अब मक्खी को कैसे रोकें, रसोई में मच्छरदानी कैसे लगाएं, डाइनिंग टेबल पर खाने बैठे तो मच्छरदानी लगा के बैठे तो परोसने वाले आएंगे तो क्या होगा। और वो मक्खी अपने ही सामने गंदे से गंदे पदार्थ पर बैठ के आती है, यहीं पड़ा होगी थूक मूक मुंह तो वहां बैठती है, लौट के यहां आ जाती है, तो अब आप क्या करो, उड़ा दो, उड़ा दो, मर जाए तो फिर पूरी फेंक देना दाल की कटोरी कटोरी, क्यों बाकी की सब्जियां खा सकते हो, है ना, कुत्ता बिल्ली से नहीं खा सकते। तो वो असत्यानुष्ठान के हिसाब से भी उनने बातें बताई हैं। अब तुम ऐसा देख करके नहीं साहब वो तो उतनी ही अपवित्र वो है, उतनी ही अपवित्र वो है, हम ऐसी तो नहीं मानेंगे, ये पोल पत्ती क्यों, ये पक्षपात क्यों, तो ये क्या पक्षपात का स्वरूप क्या है, तो ये समझ में ही नहीं आता है। उन्होंने वो सब बातें उनने समझ ली, तुझे समझना हो तो पूछ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तब मानूंगा जब प्रयोग करके देख लूंगा। क्या मेरी भाषा में बात करूं तो मुझे तुमसे भैया मनवाना ही नहीं है, तुम तो मेरे पे कृपा करके मान रहे हो और मेरे को सर्टिफिकेट देने के लिए मान रहे हो, तुम तो मत दो मुझे सर्टिफिकेट, नहीं चाहिए, तुम्हें आत्मा के कल्याण के हिसाब से वो बात देखती हो तो मानो नहीं तो मत मानो। तो पूरा आज्ञा विचय हो गया, अब उपाय विचय, धर्म ध्यान के भेद बता रहा हूं। कि मोक्ष मार्ग का उपाय क्या है, इसी का नाम अपाय विचय भी बोलते हैं। माने संसार का मार्ग क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है, उपाय क्या है और अपाय क्या है, उपाय कौन नहीं है। तो ये पूरा सिद्धांत ग्रंथ हो गए, तत्वासूत वगैरह तत्वज्ञानियों के वो बातें हो गई, समझे ना। फिर विपाक विचय, तो पूरा करुणानी योग हो गया। अब कौन सी प्रकृति कौन सी क्या है, कैसे क्या है, सोचते रहो, है कि नहीं। और फिर संस्थान विचय, तो तीन लोग का नक्शा हो गया, संस्थान होने आकार, उसके बारे में सोचते रहो। तो ये तो सब जिनवाणी का स्वाध्याय ही है, तो अपन धर्म ध्यान तो कर ही रहे। दिक्कत तो ये है कि हमारे इस धर्म ध्यान को जो शास्त्र के अनुसार से सही है, वे धर्म ध्यान नहीं मान रहे, तो वे धर्म ध्यान का स्वरूप नहीं समझते। ये बात नक्की हो गई कि नहीं, समझती है? तो व्यवहार धर्म ध्यान तो ये है ही, अब शुक्ल ध्यान अभी पंचम काल में होता नहीं है, छठवें सातवें गुणस्थान में भी मुनिराज जाते हैं तो सातवें के दो भेद हैं, एक सातिशा एक निरतिशा, तो वो ध्यान की अवस्था निरतिशा में होती है, जिसे श्रेणी बोलते हैं ना, तो वो तो होता नहीं श्रेणी वाला ध्यान। अब वो गए आए आए ऐसा होता है, तो ऐसा तो पांचवें में भी होता है, चौथे में भी होता है, थोड़ा कम काल को होता होगा, वियोग कम काल रहता होगा, है वहां ज्यादा होता होगा, इतनी तो फर्क है ना। अब तो मुख्यता तो ये, अब वो निश्चय धर्म ध्यान जिसे हम कहते हैं, अब उसे शुक्ल ध्यान तो कह नहीं सकते क्योंकि वो नीचे होता ही नहीं है। अब मुनि के मान लो कदाचित सिद्धोपयोग की बात करते तो ग्रस्त के तो नहीं होता ना भाई साहब। अब अपन तो अभी ग्रस्त बैठे, अपन को तो अपना निर्णय करना, ये सब क्लास में लगाने वाले हो जाने वाले सब ध्यान की में, ये सब ग्रस्त ही हैं कि नहीं है क्या? तो लगाओ ना, ये हमारी क्लास लग रही है ध्यान की तो है ही, धर्म ध्यान की नहीं। आप समझ गए ना, ये ध्यान की क्लास है। अब तुम इसे ध्यान नहीं मानते हो, ये ध्यान नहीं कहते, ध्यान के विरोधी है, हम कह रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं भाई साहब, कर भी रहे हैं, तो तुम ध्यान का स्वरूप नहीं समझते हो। एक बार तुम्हें ध्यान से इस बात को विचार करने की जरूरत है, ये किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हमारे चित्त में जो विकल्प खड़े होते हैं ना। और एक एक, एक तर्क और आता है कि ऐसे चलते चलते खाते पीते ध्यान हो जाएगा, ऐसे शांति से ऐसा एकांत में बैठ के ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा, ऐसा भी उत्तर दिया जा सकता है, हाँ हो जाएगा, कोई घबराहट की बात नहीं। मुनिराज जो चलते हैं ना, तो उनको सपनों गुणस्थान में जाने के लिए बैठना नहीं पड़ता, समझ गए, चलते चलते भी, भोजन करते करते भी बीच में आ जाता है, पूजा करते करते भी आता है, तुम्हें भी आ जाता है, तुम्हें पता नहीं है। ये क्या बोलते हो तुम बीच में, कायो सगम करो मिहम, क्या है ये क्या है? ये विपसर्ग नाम का वही है ना, ये कि अपनों को भगवान की भक्ति करते करते पर अपना उपयोग अपने आत्मा पे चला गया, समझा ही ना, भगवान का देखना सुनना बोलना सब बंद हो गया और हम अंदर चले गए, अब लौट के आए, अब कह रहे अब तुम्हें तो सीखना पड़ता है कैसे क्या उत्तर, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, क्या आंखें बंद करके नौ दफे नवोकार मंत्र पढ़ लो, अगर नवोकार मंत्र पढ़ लिया तो काय उत्सर्ग तो हुआ ही नहीं, घबराना नहीं। क्योंकि तुमने ये काम बता दिया, पूजा का आज तक छोड़ के नवोकार मंत्र पढ़ लिया। तो वो तो उसी जाति का है, वो तो आत्मा में जाने की बात है, तो वो पूजा के बीच में भी आपको हो गया, ऐसे भोजन के बीच में झूठे में हो जाता है, अरे उपयोग अंदर चला गया, हाथ का कौर हाथ में रह गया, मुंह का कौर मुंह में रह गया,
क्यों
नहीं हो सकता है? तो इसलिए जो आप कहते बैठे बैठे हो जाएगा उसमें भी कोई दम नहीं है, लेकिन हम नहीं मान, हम मानते हैं कि नहीं बिल्कुल पहले से स्थिर आसन होके शांति से बैठ के और अपना बराबर चिंतन करते करते ठीक है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि उसका किसने मना किया कि आप शांति से बैठ गए। अपने शास्त्र में समय करने की नहीं है, सुबह दोपहर शाम, और मुनिराजों को कहते छह छह घड़ी और शाम मध्यम साधकों को चार चार घड़ी, ऐसा आता क्या नहीं है? सामान्य को दो एक दो दो घड़ी मान एक एक अंतर मुहूर्त है ना, तो समय का निषेध कौन कर रहा है? समय तो हमारे व्रतों में है, बारह व्रतों में है, समय एक प्रतिमा है, उनका निरूपण अपने नहीं होता है। तो आप क्या समझते हो कि आप ऐसे बैठेंगे समय इसका निषेध कर रहे हैं? अरे उसका निषेध नहीं है, लेकिन ऐसे बैठ के फिर सांस को देखो, इसका निषेध है। यहां नहीं है, यहां नहीं है, नहीं क्यों देखो? गुदा में है कि नहीं है? गुदा देखो और वे तो घूमते रहते हैं भाई साहब, यहां के प्रदेश कोई उत्कृष्ट हो ऐसा तो है नहीं, माने प्रति समय घूमते हैं ऐसे, बिल्कुल राउंड लगाते हैं, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, सब आते रहते हैं। जैसे खून घूमता है ना शरीर में, ऐसे आत्मा के प्रदेश भी घूमते हैं, फिर यहां ले जाओ, फिर यहां ले जाओ, फिर यहां ले जाओ, क्या है ये? जिस देह की क्रिया आज सुबह के व्याख्यान में ही था ना, कि काया राखें धर्म शरीर माध्यम खुद धर्म साधनम, अरे जिस शरीर से भेद विज्ञान करते करते आकाश थक गए कि शरीर जुदा है, तू जुदा है, तेरे संभालने शरीर का कुछ नहीं संभलता है, शरीर के संभालने का भाव पाप भाव है, क्यों? अरे हम भी उसी लेन पे डर गए, महावीर के मुख में भी कोई डाल दिया, बताओ कौन से आचार्य ने लिखा है ना शास्त्र ने? अब वो बाइबल में लिखा है और वो लिखा है कालिदास ने, अब हमने उसे भगवान महावीर के मुंह में डाल दिया और सब नीचे से ऊपर तक लेखों में और भाषणों में सब जगह ये कहें, उनका इतना विशाल बहुमत है कह दी अपन पिटते पिटते बचने दिए, अपने ऐसे कहने की ये सब बात गलत है। तो रामलीला मैदान में नहीं कह सकते क्या? कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी तो देखो उक्त बीस चंद, मतलब मेरे मैं क्या कह रहा हूं इतना समझ लो, वो समय का भी मना नहीं है ऐसा, अरे उसका तो प्रतिपादन है, ज्यादा चांस उस टाइम में ही होने के हैं, लेकिन तुमने उसकी भी मिट्टी पलीत कर दी, उसकी सुनना है थोड़ी किस, हम दो घड़ी क्या करेंगे, चार घड़ी क्या करेंगे? भक्तामर का पाठ पढ़ना ना, नवोकार मंत्र पढ़ लेना, एक ही भाव स्तोत्र है, क्यों पढ़ लो। तो बेचारे को एक सेकंड सोचने का तुमने समय नहीं बचने दिया, सोचो कहते ये तो पढ़ने में लगा दिया। तो क्या है समय का सही स्वरूप? कि वो जो अपने चार तारों दिशाओं में चार आवर्त वगैरह विधि है ना ऐसी, वो सही है, वो करना चाहिए, वो कोई ऐसा क्रियाकांड नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप समझना चाहिए। क्या क्या है स्वरूप? कि जब तुम सामायिक में बैठो तो निर्विघ्न निर्जंतु स्थान देखो, क्या निर्जन निर्जंतु निर्विघ्न, तीन चीजें समझ में आ गई कि नहीं? क्या है निर्जन माने? ये माथा खाने वाले लोग नहीं हो गए, समझ ना, जन जनता नहीं हो, निर्जन और निर्जंतु, ये कीड़े मकोड़े नहीं हो गए, समझे ना, और निर्विघ्न किसी तरह का विघ्न नहीं हो। ये पहले देख उपसर लेना, हम धूप में जाके बैठेंगे तो अपने आप ही सभी जगह बैठ रहा है, अपने यहां तो आज्ञा है, वो जो चारों तरफ ऐसा ऐसा करके अपन देख रहे हैं ना, वो तो हम चारों तरफ देख रहे हैं कि यहां कोई विघ्न तो नहीं है, यहां कोई जंतु तो नहीं है, यहां कोई जन तो नहीं है, उसके लिए तुम तो आंखें बंद करके घूमता है। कोई आंखें बंद करके दाई बन गाड़ी चलाए तो क्या होगा? अरे आंखें बंद करना जरा, अभी खुली रहे। जब तक तुम चारों तरफ आवर्त करके देख रहा है ना, क्या अब वो ऐसे ऐसे करना, ऐसे उसमें सब ट्रेनिंग तो हम पूरी ले लेते, ऐसे हमें कुछ पता नहीं है। हिंदुस्तान में 5000 मंदिर होंगे तो पूजा करने की 5000 नहीं 6000 विधियां हैं, हर मंदिर की अलग, और हर मंदिर में हर पुजारी की अलग, और वो दूसरे की विधि को बिल्कुल गलत मानता है अपनी को सही, क्या कि वो तीन चावल गिन के उठाएगा, दूसरा बिना गिने उठाएगा, वो तीन उनमें साबुत ढूंढेगा, दूसरा नहीं साबुत ढूंढेगा, और लेकिन ऐसे 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 ऐसा करेगा, यदि हमारा एक आटा कम हो पाया तो हम फिर हमने पूजने बनाई सारी जिंदगी भर किया कराया, हम आज तक पास नहीं हुए कहीं पूजा कराने, हमारी पूजा सही आज तक किसी ने नहीं मानी। जो पूजा के एक शब्द के बारे में काला अक्षर भैंस बराबर है, उनने भी हमको फेल कर दिया। क्या करें, तो वो आप समझ गए ना, चारों दिशाओं में मुख करके देखना, अपने निर्जंतु निर्विघ्न निर्जन स्थान देख के शांति से अपने फिर बैठ के आंखें बंद करके फिर नौ दफे नमो का मंत्र पढ़ना याद कर लो पंचदृष्टि को बस, और फिर दो घंटे तक बैठे रहो, फिर जब उठो तब एक क्रिया फिर दोहरा लो, ये अपनी विधि है। अब हमने क्या किया कि बीच वाला पूरा समय हमारे लिए आत्म ध्यान का था, निर्विकल्प होने का था, तो उसमें हमने न केवल मानसिक विकल्प बल्कि हमने वाचनिक विकल्प भी तय कर दिए और क्रिया संबंधी विकल्प भी तय कर दिए। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूं आपको, हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो वहां मंदिर में जो मूर्ति थी वो खड़ी मूर्ति थी और बिल्कुल पतले पैर थे उनके, और रोजाना पंडित जी उसे उठवा करके यहां रखते थे थाली में और उसे पंचामृत से कराते थे, और सारे विद्यार्थियों को उपस्थित रहना जरूरी था। अब एक दिन कोई कमजोर विद्यार्थी वो मूर्ति को उठाने गया तो उसने उसे उठाई तो कम उठी जरा, और फिर उसने आगे को खींच दिया तो पैर तो रह गए उस गड्ढे में और मूर्ति हाथ में, वो मूर्ति अभी भी सोनागिरी में रखी है एक मंदिर में। आप कभी मेरे साथ यात्रा करने चलो तो मैं बता सकता हूं कि ये हमारी मूर्ति वो थी जिसकी हमने बहुत दिनों तक पूजन की थी, टूट गई थी, वो सब अभी भी रखी है। हम जय दफे जाते हैं हम तय दफे उसके दर्शन करते मिलती है हमको, है ना। कई लोगों को बताई, हमारे साथ यात्री होते हैं उन्हें जरूर बताते हैं कि देखो भैया ये मूर्ति वो है। अब हमें उनने वेदी प्रतिष्ठा करी, दूसरी मूर्ति लाए, वो करने के बाद फिर सबको जब मैं बैठा रहा तो हमारा नंबर भी आया, जब मैं बैठा था तो उनने हमको बैठा ला तो कहेंगे ये हाथ ऐसा रखना ऐसा नहीं हो जाए, फिर इस दो उंगलियों को अलग रखना, फिर इधर वो धूप रखना, फिर उसको ऐसे खेना, फिर एक दफे ये मंत्र बोलना और एक उसका माला का गुड़िया आगे बढ़ा देना, जब माला पूरी हो जाए तो एक लोंग यहां से उठा के यहां रख देना, क्या और हाथ ऐसे से ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ये कदम ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा भैया हमारे बस के लिए तो है, हम तुम्हारे जब मैं नहीं कर सकते, इनका ध्यान रखने का मंत्र तो भगवान का कि आत्मा का क्या करें, इतनी हार्ड ड्यूटी। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं करूंगा, समझे ना। सबसे ज्यादा उद्दंड छात्रों में से मैं था, इसलिए जो तुम्हारी उद्दंडता की खबरें मेरे पास आती है ना, मैं बहुत अच्छी तरह जाना हूं सब कि क्या हुआ होगा, करूं कुछ नहीं। अब मैं नहीं करूंगा कि माला तो गिनोगे कि नहीं, मैं माला भी नहीं फेरूंगा, माला की क्या जरूरत है, दो दफे कम हो जाएगी दो दफे ज्यादा हो जाएगी, फिर ध्यान रखोगे नहीं, उपयोग तो भटक ही जाता है, कौन गारंटी से कह देता है कि तूने जब माला फेरी थी तो गुड़िया बिल्कुल सही रूप से आगे खिसकाया है, मुझे बताओ मत लेकिन मन में सोच लेना, होता कि नहीं होता भ्रष्ट देख लेना अपना अपना। तो फिर कैसे गिनती कैसे होगी कि 1.25 लाख जप हो गया। मैंने कहा देखो जो लोग बाकी के बैठेंगे मैं उनके साथ ही बैठूंगा और जब वे उठेंगे उनके पहले उठूंगा नहीं और बराबर मंत्र का जाप करता रहूंगा। कोई मेरे सामने अग्नि मग्नी मत रखो, इसमें जो वो गिरती है ना धूप उसे धुआं उठता, मुझे एलर्जी है धुआं से। तो उतने जिसके तो पड़ोसी जितनी मालाएं लिखा है उतनी मेरी लिख लेना, समझ में आया कि नहीं है। गारंटी से मैंने 2 दफे ज्यादा ही बोला होगा कम में ही। कितने कितने में काय की अग्नि, काय की धूप, काय की खेना, क्या मतलब है। अब इतनी बातें जब बाहर की जड़ की क्रिया में इतने उलझ गए तो वहां तो मानसिक विकल्प भी सही नहीं हो सकता है, हैं? तो विकल्प अतीत अवस्था की बात तो कितनी दूर है, उसे आप जाप बोलते हो, उसे आप सामायिक बोलते हो। तो वो असली ध्यान तो वो काल है अपने ध्यान का, मुनिराजों का भी असली ध्यान का हम कहां मना कर रहे। लेकिन एक भी ये ध्यान शिविर वाले जो हमारे शास्त्र में लिखी क्रियाएं हैं वो बिल्कुल नहीं बताते, उनको एक को भी नहीं आती होगी। अब आप जो क्या कहें, तो शास्त्र के अनुसार तो कुछ भी नहीं है। वो है ना कि भाई इनके 2 घड़ी संत लाली, इनके 4, इनके 6 ऐसे ने की है ना। ये तो 2 घड़ी वाले भी 10-10 घड़ी बैठे रहते हैं सब बंद करके। हेमचंद जी ने एक लेख लिखा था, हेमचंद जी ब्रह्मचारी, वो आपने पढ़ा होगा कि वहां से कहीं से किसी का नाम नहीं लेता हूं मैं, ये आया कि हमारा फलानी जगह ध्यान शिविर होगा तो उसकी दिनचर्या लिखी थी सुबह से शाम तक। तो उसमें ना जिनेन्द्र पूजन थी, ना उस जगह पर जिनेन्द्र भगवान के दर्शन की व्यवस्था थी, उस जगह जाके सब ध्यान करेंगे ना ऐसे, और कोई अपनी जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उसमें कुछ नहीं थी। ये तो बहुत था कि अखबार नहीं पढ़ना और टीवी नहीं सुनना और वो ये नहीं करना और फोन नहीं रखना, ये सब थी जो आज है, लेकिन वो एक भी चीज नहीं थी है? जो अपने एक ग्रस्त के लिए दैनिक चीजें हैं उसके बाद ही ध्यान करोगे ना। तो हेमचंद जी ने लिखी उन व्यक्तिगत भी कई उनसे अखबार में भी लिखी कि भैया तुम्हारी ये दिनचर्या में न जिनेन्द्र दर्शन है, न पूजन है, न भक्ति है, कहीं कुछ है ही नहीं, और बस सुबह से शाम तक ध्यान खाना और शुद्ध सात्विक खाना, वो ध्यान 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 है कि ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। तुम वहां से दूर ले गए, कोई आप तत्व चर्चा ही नहीं करना, 24 घंटे में तत्व चर्चा का ही निषेध। घर की चर्चा नहीं करना वो तो ठीक है, लेकिन तत्व चर्चा भी नहीं करना। और 99% को 1-2% में छोड़ देता हूं, वो ध्यान का ढेर जो त्रिकाली तो भगवान आत्मा उसकी कुछ खबर नहीं है, उसके बारे में सोचते हैं क्या कैसा कहा उनको बहुत अटपटा लगता है। ये जो अपने विद्यार्थी है ना, अभी ये तुम कहीं जाओ ना तो अपने जो पंडित होंगे बड़े महाराज होंगे तो बिल्कुल ऐसे विनयशील बन के हाथ जोड़ के ऐसे बैठ जाना और फिर पूछना कि त्रिकाली तो भगवान आत्मा वो दृष्टि का विषय होता है जिसमें अपने ध्यान का ध्येय बनाते हैं। तो क्या से लाया माने उनने वो शब्द पहले सुना होगा। ये हालत है नीचे से ऊपर तक की, डंके की चोट कह रहा हूं टीवी पे जाएगा, तुम फिर यहां सुन लेना 1-2 महीना बाद, और सारा देश को सुना रहे हैं, कुछ नहीं किसी को नहीं, कोई नहीं पता ही नहीं, जाने नहीं है कुछ नहीं। बिना देखे टीवी पे बिना सुने ही टीवी पे जाने की जरूरत नहीं है, ये शुरू होगा। एक दिन सुनेंगे नहीं एक दिन भी, कल में नहीं ना, और फिर देना चाहिए तो किसका देना चाहिए किसका नहीं देना चाहिए। अरे टीवी बिकाऊ है, जिसका चाहो उसका दो ना, तुम्हें कौन रोकता है। सुमंत प्रकाश जी का नहीं देना चाहिए,
दो ना तुम, फिर तुम क्यों नहीं? अरे हमारी व्यवस्था मुश्किल से कर पाते हैं।
एक दफे की और सच्ची घटना सुनाता हूं कि साहब वो फलाने की किताब आई, वो अपने यहां से नहीं छप रही है, नहीं छप रही। सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर हाल की छपते हैं, हाल छपते हुए पार्नी जी के माथे पर 3 साल पड़ रहे थे। तो क्यों, क्या है? ये ऐसा है, वो ऐसा कहते, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा कहेंगे। नहीं, आपको आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं आज निपटा देता हूं सबको। उनकी समझ में नहीं आई क्या निपटाएंगे जी। मैं आया प्रवचन में और मैंने कभी इसमें क्या गजब हो गया, हमारी किताब हम छपाते हैं, तुम्हारी तुम छपाओ, हम अपने दांत साफ करते हैं, तुम अपने साथ साफ करो, हम अपने शरीर को नहाते तो, अरे इसमें कौन सा अन्याय हो गया? उनकी में एक गलती नहीं होती है और दूसरी में सैकड़ों गलती है। अब मैं क्या, अब क्या करूं कि मैं सबका प्रूफ रीडिंग भी मैं ही करूं? मतलब हमारे यहां से भी छप रही, मेरी समझ ना। सुमत प्रकाश जी की किताब मेरे यहां से छपे तो उसकी प्रूफ रीडिंग मैं करूं? अरे मेरी तो कोई करता नहीं है, ये कोई कम तकलीफ की काम है, उसे मुझे फाइनल अपनी करनी पड़ती है। और अब तो पहली भी मैं ही करता हूं, दूसरी भी मैं ही करता हूं, तीसरी भी मैं ही करता हूं, जितनी दफे करता हूं मैं ही करता हूं, कोई दूसरा देखता ही नहीं है। अब मैं सबका प्रूफ रीडर बन जाऊं? अब ये भी मेरा एक गलती है कि मेरी में एक गलती नहीं होती था, अब क्या करें, एक गलती है और दूसरों की में गलती होती है, तो दूसरों से कहो ना क्यों। तो मैंने भरी सभा में कहा, अरे आपने ये क्या किया, आपने क्यों, अब आपका डर निकल गया, आप उससे कह दो जो आदमी आए, भैया हमारे यहां नहीं, हम तो अपनी मुश्किल से छाप पाते हैं, उनकी व्यवस्था मुश्किल से कर पाते हैं, उनकी भी बिक्री मुश्किल से करते, उसमें बहुत घाटा होता है, बहुत तकलीफ होती है ना, अपनी की इतनी कीमत कम करा देते हैं, तो तुम्हारी कराओ ना, हम कब मना करते हैं, हमें ये सब कैसे कर सकते हैं? इसमें अजय भाई, इसमें क्या अन्याय है, बोलिए। तो ये हमारे दिमाग के जबरदस्ती के बोझे हैं, जुर्मानी है ना, हम जुर्मानी के अनुसार अपना काम करो। अब जो आगे बढ़ते हैं, उक्त 20 छंदों में प्रत्येक के अंतिम 3 पद तो समान ही हैं, मात्र पहले पद में परिवर्तन है, एकस्य बद्धो न तथा परस्य, इसमें ही परिवर्तन है, बाकी तो एक तीन एक से ही है ना। 70 में जो माना इसका पहला 70वां अर्थात प्रथम पद में समागत बद्ध अबद्ध पदों के स्थान पर पद और शब्द में जो अंतर बताया था, ख्याल में है? शब्द नहीं लिख देना, पद, पद और शब्द में बहुत फर्क है। पद उसे कहते हैं जो शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में अभिरूढ़ हो गया हो। पंच परमेष्ठी पद है, अरहंत अपने आप पद है, शब्द नहीं है। तो अरहंत का अर्थ शब्द के समान नहीं कर सकते हो, प्यारी माने शत्रुओं को मारे वे अरहंत, अरहंत को हत्यारे बताते तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी को मारे अरहंत मारते हैं, नया काम करते हैं, कोई व्याख्या नहीं होती। हमारे यहां अरहंत एक पद है, उसकी परिभाषा है, टोटामल जी ने कितना क्लियर लिखा, क्या कि जो गृहस्थ बना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा, 4 घातियाकर्मों का अभाव कर, अंत दुष्ट रूप विराजमान भय बे अरहंत है, ये हमारे अरहंत का पद की परिभाषा है। ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं की जाती है, और व्युत्पत्ति करोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। कहने नहीं अरिहंत नहीं, ये तो हत्यारा सा लगता है, तो अरुहंत अच्छा है कि जो उगे नहीं, माने संसार ना हो गए जिसका द्वारा, अरुहंत फिर अरहंत। अरे भाई ये 3 तरह के शब्द हैं, उनका प्रयोग 3 तरह से आचार्यों ने किया है, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही है, और वो जो टोडामल जी ने बताया है वो अनंत चतुर्थ से विराजमान है, बे अरहंत है बस। आप ऐसे नामों की व्याख्या करते हो, शांति कुमार के शांति लाल क्यों, तो शांति ऐसी व्याख्या करने से काम चलता है? क्रमशः मूढ़ अमूढ़ रागी अरागी कर्ता अकर्ता देशी अदेशी आदि पद रखकर शेष छंद बनाए गए हैं। अब आप भी बना सकते हो राजद में। अतः सत्तर में छंद का भाव ख्याल में आ जाने पर शेष छंदों का भाव सहजी भाषित हो जाता है। यही कारण है कि कलश टीकाकार पांडे राजमल जी ने कलश टीका में मात्र एक सत्तर में छंद का ही अर्थ किया है, शेष छंदों का अर्थ ही नहीं किया। संस्कृत में ही ऐसे छोड़ दिए, कई कई जगह लिख देते सुगम में तक, ये तो सरल है तुम देख लेना। अपनी क्लास में भी कह देते ना ये पढ़ लेना तुम, इतना पढ़, इतना मैंने पढ़ा दिया ये तुम पढ़ लेना। अब कलश टीका ने सत्तर में छंद का जो अर्थ किया है उसमें का भाव इस प्रकार है। अब अपन वो एक से सबका काम निपट जाएगा ना, इसलिए अपन वो देखते हैं। दो प्यारा दिए हैं इसमें। चैतन्य मात्र वस्तु में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दो नयों के दो ही पक्षपात हैं। जीव अनादि से कर्म के संयोग के साथ एक पर्याय रूप विभाव रूप परिणमा है। अब ये मैं भी बताऊंगा, ये सब एक एक शब्द का अर्थ है इसमें। इस प्रकार द्रव्य स्वरूप को ग्रहण न कर मात्र बंध पर्याय की ओर से देखें तो जीव बंधा है और एक पर्यायार्थिक नय का पक्ष तो यह है, और दूसरा नय का पक्ष यह है कि जीव द्रव्य अनादि चेतना लक्षण है, उसमें बंधन है ही नहीं, वह सदा अपने रूप ही रहता है, क्योंकि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं परिणमता। अब देखो इसमें बहुत ही रहस्य है, एक एक निकालते हैं अपन धीरे धीरे। इसमें द्रव्यार्थिक पर्यार्थक क्यों लगाया, निश्चय व्यवहार क्यों नहीं लगाया, इनके पक्के अन्यायी बनासी दास से देखो नीचे पढ़ो। व्यवहार दृष्टि सो विलोकत बंधो सो जी से निश्चय निहारत न बंधो यही कि नहीं। बस भाई तो इतना ही होता, अभी जब पढ़ेंगे जब पढ़ लेंगे। इनके निश्चय व्यवहार नहीं लगाया, इन्हें द्रव्यार्थी पर्यार्थी लगाया, और मूल गाथा में लगाए ही नहीं। एक बद्धो न तथा परस, एक से कह दिया, अब तुम पे छोड़ दिया, तुम लगाओ, नहीं छोड़ा होता तो ये फर्क नहीं आता, ये खुद ही कह देते क्यों। अब उनने तो एक से बद्धो न तथा परस से इतने से काम चला लिया क्यों। अरे अब ये गुरु जी कह रहे हैं कि दिव्यार्थी पर्यार्थी लगाओ, शिष्य कह रहे हैं कि निश्चय व्यवहार लगाओ। अब इसमें से मेरी सारी रिसर्च है जो इसमें लिखी है मैंने, और फिर मैं बताता हूं धीरे धीरे ऐसा क्यों होगा। इनने गलत किया, ये मेरी आदत नहीं है, ऐसा का कोई विशिष्ट अर्थ है तो हम देखें। ये जो व्यवहार नए है ना, तो अपन क्या बोलते हैं, असदभूत जो व्यवहार नए है जिससे अपन कर्मों से बंधा मानते हैं और नो कर्मों से बंधा मानते हैं आत्मा को। अब ये तो उसको तो नए ही नहीं मानते कौन राजमल जी, इसलिए कर्मों से बंधा है कैसे लिख सकते हैं, उनकी तकलीफ समझ में आई कि नहीं आई। यदि मैं होता उस वक्त तो मैं समझा लेता राजमल जी को। देखो देखो क्या लिखा है, अब पढ़ते हैं, देखो ध्यान देना कि चैतन्य मात्र वस्तु में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दो ही नयों के पक्षपात हैं। जीव द्रव अनादि से कर्म संयोग के साथ एक पर्याय रूप विभाव भाव रूप परिणमा है। ये विभाव भाव रूप परिणमा इसको बंद कह रहे, वो कर्म के साथ बंद हुआ ऐसा बंद नहीं मान रहे। इस प्रकार द्रव्य स्वरूप को ग्रहण न कर मात्र बंद पर्याय को देखें, वो विभाव रूप परिणमा है ना, वो बंद पर्याय है ना, देखें तो जीव बंधा है। मैंने राग देश मोह उसमें है, मैंने उनसे बना है, राग देश मोह से बना है, कर्म से बना है, बातें मोह में नहीं लाती। अब पंचाध्याय के नए नहीं पढ़े हो और इस पर आपका ध्यान नहीं जाए तो आपने निकाल, तो पढ़ने वालों ने कौन सा निकाल लिया दादा, ख्याल में आएगी बात क्या नहीं आएगी। अब बनारसी दास जी के उनको भी व्यासी पर्यासी लेना चाहिए था, उन्होंने निश्चय व्यवहार लिखा। आगे पीछे की जो धारा चल रही है वो तो निश्चय व्यवहार की चल रही है, क्योंकि अध्यात्म का कथन है सब, ये सिद्धांत का कथन ही नहीं है, यहां से व्यास बाजार से लगा ही नहीं सकते थे, लेकिन राजमल जी के पास कोई रास्ता नहीं था इसलिए उन्होंने लगा दिए। अब तो आगे बढ़ते हैं, देखो ये एक प्रजाधिक न्याय का पक्ष तो यह है, और दूसरा दिव्यार्थिक न्याय का पक्ष यह है कि जीव दिव्य अनाज निधन चेतना लक्षण है, उसमें बंधन है ही नहीं, वह सदा अपने रूप ही रहता है, क्योंकि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के द्रव्यगुण पर्याय रूप कभी नहीं परिणमा है, ये उनने निश्चय लिया। अब जो व्यक्ति शुद्ध चेतन मात्र स्वभाव का अनुभवशील है वह उक्त पक्षपात से रहित है, वो अनुभवी उस है ना, अनुभवशील, शील माने सहित है ना, एक वस्तु की अनेक रूप कल्पना करने का नाम ही पक्षपात है। अब देखो इन्होंने बंदा बंद को छोड़ के एक एक अनेक पे चले गए, शांति जी आगे एक अनेक का भी बोल भी आया ना, अब फिर एक तरफ ढल रहे हैं कि एक वस्तु तो एक है और उसे अनेक रूप तुमने कल्पित किया तो ये पक्षपात है, जैसा नहीं कि वस्तु तो अनेक है और उसे एक रूप कल्पित किया, ये नहीं बोलेंगे जी, अब सुने ना दादा आपके ख्याल में आई बात करनी आई, उल्टी भी बोलो ना, यहां लालू भाई आए थे और 114वीं गाथा चलाई थी प्रवचन साहब की, तो दब्यथे ने दृद्धार्थिक नय की चक्षु को और प्रजार्थिक नय की चक्षु को सर्वथा बंद करके देखो, तो दृव्य एक ही है बिल्कुल अबंध है ऐसा बोलते थे, देखो लिखाना प्रजार्थिक नय की चक्षु को सर्वथा बंद करके, समझ लो सर्वथा बंद करके, फिर ये नहीं कहना कि कथनचित, ये जैन धर्म कथनचित नहीं सर्वथा है, देखो प्रजार्थिक नय की चक्षु को कभी खोलना ही नहीं है, तो मैंने कहा फोड़ दो ना फिर, जरूरत ही क्या है इसकी है? मैंने कहा भाई नीचे की पंक्ति भी तो पढ़ो, तो नीचे की पंक्ति पढ़े ही बिना हाँ नीचे देख लें और आगे बढ़ जाए, इसमें चार दिन तक व्याख्यान किए और दूसरी वाली पंक्ति पर 5 मिनट भी नहीं बोले, मैंने उसी पर तो कहा कि भाई ये क्या लिखा कि दिव्यार्थिक नय की चक्षु को सर्वथा बंद करके लिखा है, देखो और अकेली प्रजा से नहीं की चक्षु से देखो तो ये सत्यार्थ है, ये सब क्लियर लिखा है, वो पढ़ते ही नहीं, वो देखते ही नहीं, अब यहां भी एक तरफ घटाया है, देखो फिर कलश जी का देख लो, क्या देख रहे कलश जी का, अब समझ रहे ना, देख रहे आप, फिर देखो पढ़ रहा हूं मैं आपको, एक वस्तु की अनेक रूप कल्पना करने का नाम ही पक्षपात है, वह अनेक रूप वस्तु का एक रूप कल्पना करना पक्षपात नहीं है, यहां तो दो ही बता रहे, तो एक ही बात क्यों कर रहे, और बंद बंद की छोड़ दी, बंद में वो झगड़ा पड़ता है कौन सा परद्रव्य वाला, तो वो उन्हें लेना नहीं है, अब क्यों है? वह वस्तु मात्र का स्वाद आने पर कल्पना बुद्धि सहज ही मिट जाती है, बस सीधा फिर अनुभव हो गया और कल्पना बुद्धि मिट गई, खत्म हो गया काम उनका, शुद्ध स्वरूप का अनुभव वाले को चेतन वस्तु का प्रत्यक्ष स्वाद आता है, अतः वह नए पक्षातीत है। ये भाई अभी आगे बढ़कर अब पढ़ते हैं, घबराओ नहीं, पंडित कविवर बनारसी दास जी नाटक समय सार में सर्वत्र कलश टीका का अनुसरण करते हैं, सर्वत्र, तो इस कारण उन्होंने भी यहां 20 छंदों के भाव को लेकर समय सार का एक ही छंद बनाया, जो इसमें तो उन्होंने अनुकरण किया, उन्होंने 20 छंद नहीं बनाए, अपन ने तो 20 बनाए, क्यों क्यों, तो उनने एक का अर्थ किया, उन्होंने एक का छंद बना दिया, बबलू लेकिन वो अनुकरण नहीं किया, अब या तो उनके ध्यान में नहीं आया कि वो भी समय दोनों एक ही है, आगे वो भी लिखा है मैंने, सब बता रहा हूं, देखो पढ़ो, अब पढ़ लो भैया, बेहार दृष्टि सो बेलोकत बंधो सो दिशे,
Yeah.
एक पंक्ति का अर्थ मैं आप लोगों से पूछता हूं, सब अपने अपनी जगह बैठ के उसका अर्थ खोजो, नीचे मत देखना। नीचे तो लिखा ही है, नीचे तो लिखा ही है ना। देखो, को कहे समल बिमल रूप को कहे, क्या है इसका अर्थ बताओ, सोचो सोचो, देखो नहीं है? देख पढ़ो नहीं, सोचो, और ध्यान में तो सोचो नहीं बोलो नहीं, चेष्टा भी मत करो, ध्यान के लगे है ना, माँ चित्तई माँ जम्पई माँ चिंतई है ना, लेकिन अभी चिंतन करने की बात कह रहे हैं है? अब मैं अर्थ बताता हूं, इसे नीचे लिखा है, ये समल माने हैं अनेकाकार और विमल माने हैं एकाकार। क्यों? क्यों वो बना, उनने वो एक अनेक लिया ना, तो उनने एक अनेक कोई लिया है यहां पर समल विमल, और कहां लिया बनारसीदास ने, एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठोर, समल अमल न बिचारिये यही वस्तु नहीं और, वहां पर एक अनेक के अर्थ में है। देखो अनेक वाले को समल कहा है, राग देश वाले को समल नहीं कहा, आत्मा अनंत गुण वाला है इसका नाम समल है, और आत्मा अखंड एक है इसका नाम अमल है, और वो 14 कलश देखो देखना हो तो कौन से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार के बाद जो है ना, कौन सा परिशिष्ट में 14 बोल है ना, वहां भी है बहुत मार्मिक। अब वो तुम्हारे पास वो किताब है ना, कौन सी अध्यात्म नवनीत, उसमें निकालो ये छंद निकल जाएगा अध्यात्म, इसमें तो भी इतने ही छंद होंगे ना कर्ता कर्म अधिकार के, वो अध्यात्म नवनीत में पूरा समय कलश सार कलश प्रद्यानुवाद है, उसमें 14 वाले छंद निकाल लो, इसमें नहीं मिलेंगे भैया, 248 नंबर वाला कलश निकालो, 500 पेज पे हाँ इसमें होंगे। कितना बताया, 500 पेज निकाल के लाओ ना, ये तकलीफ क्यों देते हो, निकल गया देखो, नहीं निकला मैं 14 कलश एक साथ है शुरू होता है ना, ये प्रत्यनुसार कलश प्रदान वाले समय सागर नहीं है भैया। वहां पर भी ये समल मामल आया है एकानेक एकाकार अनेकाकार के मामले में, 124 पेज पे देखो यहां जे हरि गीत है ना, इस ज्ञान में जो झलकता वह विश्व ही बस ज्ञान है, अबुध ऐसा मान कर संदोह बर्तन करे, एक अनेक वाला बोल निकालो दो से है ना, हाँ जो हाँ जी जी जो मेल गे आकार का धो डालने के भाव से, स्वीकृत करें एकत्व को एकांत से वे नष्ट हो, अनेकत्व को जो मान कर भी छोड़े नहीं, जो गे आकार माने अनेक आकार है ना, और उसको मैल मानते हैं समल मानते हैं, गे आकार को समल और ज्ञानाकार को अमल, और एक आकार को समल और अनेक आकार को अमल क्या, मुझे तो ये छंद आते हैं तो बहुत आनंद आता है, ये क्या क्या नाम मैल कह रहे हैं, तुम स्वराग देश को मैल समझते हो, तुम तो कपड़ों वाला मैल को मैल समझते हो, तुम मनमूत्र को मैल समझते हो, ये तो ज्ञान में गे झलके, और उस तरफ से तुम्हें गे तो अनेक थे ज्ञान तो एक ही था, तो तुम्हें अनेक झलके तो तुमने ज्ञान को अनेक मान लिया गेहूं की वजह से। इसका नाम है समल। हाँ, मेच का मेच करते हो, जो गाथा आती ना, इतने कलश हैं, तार तार अनुष्टुप हैं एक साथ, 16 से 19 तक है ना, मेच का मेच करते हो, है ना, समल अमल न बिचारिये, यही वस्तु का उसका उसका अनुवाद है वो, इसका 16 से 18 तक है, 20 तक है सर, इस कलश है। मैं याद रखने के लिए नहीं रखता हूँ, जितना रह जाता है उतना रहता हूँ, इसे ऐसा रहता है थोड़ा सा। मैंने बोला 16 से 20 तक छंद होंगे समय सार कलश के। देखो हाँ आगे बोलिए, देखो बस कदम, देखो मेचक सोलवा, देखो सोलवा ही कह रहा मैं, सोलवा है मेचक कहा है आत्मा, बस इसलिए मेचक का आत्मा मेचक कहा है, हे प्रगत ज्ञायक ज्योतिमय, रूपता को प्राप्त है पर ना तजे एकत्व को, ये शुद्ध निर्म अनुभव करें, मैंने कहा ना 16 से 20 तक है ना, मतलब एक पंक्ति बोलोगे तो मुझे सब पूरा ख्याल आ जाता है कि क्या कहा है इसमें, क्या कहना चाहते हैं कि मेचका क्या कर रहा है, क्या फायदा है इससे, एकाकार है अनेकाकार है गियाकार है ज्ञानाकार है, इसमें माता क्यों मार रहे हो, ये क्यों है, एक अनेक क्यों आता है, समझ जी इसलिए आता है कि एक अनेक संबंधी बोल है, ये भाव संबंधी बोल है, कौन सा, एक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, तो द्रव्य संबंधी भेद सामान्य और विशेष, क्षेत्र संबंधी भेद भेद और अभेद, काल संबंधी भेद नित्य और अनित्य, और भाव संबंधी भेद एक और अनेक, वो है सब, इसलिए उस भाव संबंधी भेद की बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा है ये। अब क्या फर्क पड़ा कलश टीका में, क्या बनारसी दास जी ने किया, कहां बनारसी दास जी ने वो बात तो पकड़ी एक और अनेक वाले बोल को, बद्धबद्ध क्यों नहीं बोला, जब वो बद्धबद्ध की चर्चा थी, पहला नंबर उन्होंने बद्धबद्ध को दिया था, तो इन्हें बद्धबद्ध में पर का संयोग आता है ना, इसलिए उनको एक अनेक में पर का संयोग नहीं आता, इसलिए उन्होंने उदाहरण के तौर पर ऐसे पकड़ा, मतलब इस तरह हम आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा समझदार का, फिर क्या करें, पढ़ तो लिया, देख तो लिया 24 घंटा जब घोटोगे बेटा तब वो उपयोग में आगे पीछे का सब ध्यान में रहेगा, फिर करना क्या, दूसरा मैं पूछता हूं उसमें, इस मनुष्य भव में दूसरा क्या करना, कल ही मैं बात कर रहा था अपने घर पे कि लोगों को बस कमाना और खाना, मैं कहता हूं ये दो ही काम दिखते हैं, और हम बहुत पैसा इकट्ठा हुए तरक्की की नहीं हुआ, अरे ये तो होता ही है, हम अपन लोग तो उन प्राणियों में से नहीं पैदा हुए हैं, तो रोटियों की व्यवस्था तो होगी ही, इसमें कोई भूखों भी नहीं मरेगा, कोई अरबपति भी नहीं होगा। क्या काम तो ये है, आत्मा के कल्याण का करना हो, दूसरों के कल्याण में भी करना हो, जनवाणी की सेवा करनी हो, तो ये काम तो एकमात्र ये है, बाकी तो कोई काम ही नहीं है। क्या वो तो होंगे साथ में, हो जाते हैं, होंगे सब व्यवस्था पुण्य पाप के योगानुसार हो जाएगी, लेकिन वो कोई बढ़िया से बढ़िया हो गई आजीव का, और बस सारी जिंदगी भर लोग करोड़ों लोग और हम में हो तुम में हो, उनमें क्या फर्क है फिर बताइए। फिर यही तो कर रहे हैं ना, क्या बस वह खाना कमाना, खाना कमाना, खाना कमाना, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, उद्देश्य ही वो है। हम तो बहुत सफल हो गए, कोई कमी नहीं रही, तार तार बेटे, तार तार बेटियां, अच्छी अच्छी जगह शादी हो गई, बेटे बढ़िया अच्छी अच्छी पोस्टों पर चले गए, अब हम तो कृतकृत हो गए। और एक तो सिद्ध भगवान कृतकृत भाई, एक तुम भाई कृतकृत भाई है, मुझे मालूम है समय हो गया है, लेकिन वस्तु की जरूरत सामने देखो ना, जब पर्त के पर्त खुलते हैं ना, फिर दिल की कली कली खिल जाती है, बाकी की बात।